نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا زدنا علما. عید ماشاء اللہ گزر گئی، لیکن عید تو واقعی میں سمجھتی ہوں کہ آج لگ رہی ہے جب آپ سب جمع ہیں ماشاء اللہ. عید تو وہی ہوتی ہے نا جس میں سب بہنیں اکٹھی ہوں، سب پیارے، سب محبت کرنے والے اتنے ماشاء اللہ اکٹھے ہوں، تو وہ عید کا دن ہے، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو. تو ہمارے لیے تو آج کا ہی عید کا دن ہے الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ جنہوں نے یہ مجلس ارینج کی ماشاء اللہ. اور آپ کو معلوم ہے سب کو کہ ایسی مجالس میں جو اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. فرشتے ان مجلسوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اتنے اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو گزرگاہوں میں ہوتے ہیں، راستوں میں ہوتے ہیں، وہ ایسی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ لوگ جو مل کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. جب ان کو ایسی مجلسیں ملتی ہیں تو وہ اس کو گھیرا ڈال لیتے ہیں. پھر وہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر وہ فرشتے آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. تو سبحان اللہ، وہ فرشتے اس مجلس میں سکینت طاری کرتے ہیں، ان کی وجہ سے سکینت ہوتی ہے، سکون، ایک اطمینان، ایک جو ایسا ایک ماحول بن جاتا ہے وہ اس مجلس کا ہی، وہ اس مجلس میں ہی مزہ آ سکتا ہے، وہ کہیں اور نہیں آپ کو ملے گا. اور وہ فرشتے ان لوگوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں جو لوگ یہاں پہ دعا کرتے ہیں. تو ایسی مجلسیں تو بڑی بابرکت ہوتی ہیں الحمدللہ. تو آپ سب کے آنے کا بھی شکریہ. میں تھوڑا سا آج اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جو عید گزری ہے، عید قربان. سب نے ماشاءاللہ قربانی دی ہوگی یقیناً، اور قربانی کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ قربانی قرب سے نکلی ہے. تو قربانی دے کے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب ملنا چاہیے. تو یہ اللہ کا قرب عطا کرتی ہے. جب انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی خاطر انسان گیو اپ کرتا ہے نا. اور ہم اس میں، ہم نے دیکھا سورہ صافات بھی ہم نے پڑھی، تو ہمیں پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کی خاطر قربانی دی تھی، اور اپنی ہر چیز قربان کرتی. دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اپنی جان قربان کر رہے ہیں، کہیں اپنا یہ بیٹا قربان کر رہے ہیں، کہیں اپنا وطن قربان کر رہے ہیں، کہیں والدین قربان کر رہے ہیں، کہیں اپنی بیوی کو قربان کر رہے ہیں کہ اس کو صحرا میں چھوڑ کے آ گئے تنے تنہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز چھوڑ دو، یہ چیز دے ڈالو، تو وہاں پہ انہوں نے دے دی. انہوں نے آگے سے کوئی چوں چرانی کی، کیوں، کیسے، کس لیے، کیوں یہ کروں، یہ سب کچھ نہیں انہوں نے کیا. اس لیے کہ وہ لوگ یہ جان گئے تھے کہ جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو اس کی خاطر دینا کیوں مشکل ہے؟ اس کی خاطر دینا تو مشکل نہیں ہونا چاہیے. جس نے دیا ہے اسی کی خاطر اگر وہ مانگ لے تو کیوں نہ دے. لبیک کہا ہر اللہ کے حکم پہ. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہو. دیکھیں، جس سے محبت ہوتی نا اس کے لیے کچھ بھی دینا مشکل نہیں ہوتا. اور محبت ہمیشہ ثبوت مانگتی ہے. محبت صرف زبانی جیب خرچ کا نام نہیں ہے. محبت صرف آپ باتیں کر کے نہیں کہہ سکتے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. کوئی کہے اپنی بیوی سے مجھے تم سے بڑی محبت ہے، اس کے بعد وہ گھر میں آئے اور آ کے بیوی کو مار پیٹ کرے یا اس کے ساتھ برا سلوک کرے، نوکروں والا سلوک کرے، ایسے کرے، تو آپ کہیں گے یہ کون سی محبت ہے؟ ایسا ہی ہے نا. تو محبت جو ہے وہ ثبوت مانگتی ہے، محبت عمل مانگتی ہے کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ مجھے واقعی اللہ سے محبت ہے. ہم بھی کیا میسج دیتے ہیں جب ہم قربانی کرتے ہیں؟ تو ہم کیا میسج دیتے ہیں؟ یہ جو آپ سب نے قربانی کی ہے تو آپ نے یہ ایک میسج دیا ہے کہ اللہ، یہ عید قربان پہ تو میں نے ایک بکرا ذبح کیا یا گائے دی یا جو بھی، لیکن عام زندگی میں بھی آپ مجھ سے کچھ بھی مانگیں گے نا، اللہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں. آپ مجھ سے میرے جذبات کی قربانی مانگے، میرے مال کی مانگے، میری صلاحیتوں کی مانگے، میری خواہشات کی مانگے، میں ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں. اپنی جان تک بھی دینی پڑے تو میں دینے کو تیار ہوں. नहीं कोई चीज़ में मुझे गिव अप करनी पड़े ना, तो मैंने ये साबित करना है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह हर चीज़ तेरे हजूर हाजिर है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मेरी तो नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना सब है ही अल्लाह के लिए, फिर देना कहाँ मुश्किल है, फिर देना तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए। तो हर चीज़ जब इंसान ये सोचे ना कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, इसकी खातिर मैं सब कुछ दे सकती हूँ, सब कुछ कुर्बान करना आसान है। और आप देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी से, बेटे की कुर्बानी से ये साबित किया कि मुझे अल्लाह की खातिर एक इकलौती औलाद, उस वक्त तो उनका एक ही बेटा था, एक इकलौती औलाद भी देनी पड़े ना, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। ये तो हमें आज पता है ना कि अल्लाह ने मींडा रख दिया, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया होगा, जब ख्वाब में दिखाया उनको कि बेटे की कुर्बानी करें और बेटे को लेकर जा रहे होंगे, तब तो उनको नहीं पता था ना कि इसकी जगह अल्लाह ने मींडा रख देना। जब हाथ में छुरी पकड़ी थी तब तो नहीं मालूम था कि अल्लाह ने इसको बदल के कुछ और रख देना, तब तो वो तहे दिल के साथ बेटे को ही कुर्बान करने गए थे। और अल्लाह ताला ने उनका अजर कयामत तक के लिए लिख दिया, इसलिए कि जब इंसान कुर्बानी करता है अल्लाह की खातिर खलूस नियत के साथ, तो अल्लाह इतनी कदरदानी करते हैं कि अल्लाह ताला को मालूम है कि ये आसान नहीं था। बाप का भी हौसला और बेटे का भी हौसला देखें, जो कुर्बान होने जा रहा है, जो कुर्बान होने जा रहा है वो इतना पुरसकून है, ये कह रहा है मेरी माँ को ले जाके ये मेरे कपड़े दे दीजिएगा। और बाप देखें जिसने इतनी दुआओं के बाद ये औलाद ली, लेकिन पुरसकून है जब बेटे को साथ लेके जा रहे हैं। कोई पिकनिक पे तो नहीं जा रहे थे ना वो, कोई सैर के लिए नहीं जा रहे थे, इसको जिबा करने के लिए ले जा रहे थे। तो हमारा तो ये हाल है कि बेटा कुर्बान करना तो दूर की बात है, हम तो कोई मामूली चीज भी अल्लाह की खातिर कुर्बान नहीं कर सकते, ना सलाहियत, ना नींद, ना घर के काम, ना कोई शॉपिंग, ना कोई कोई चीज भी नहीं कुर्बान की जाती हमसे। वही बात है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हमारी तो ख्वाहिशें ही इतनी ज्यादा हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकलता कि हाय ये ख्वाहिश ना पूरी हो, ये कैसे हो सकता। हर हर चीज से हम चिमटे में, तो कैसे सबूत देंगे फिर अपनी मोहब्बत का। कुछ तो देना पड़ेगा ना अल्लाह की खातिर, कुछ तो लगाना पड़ेगा। अब आपने जो बकरा दिया या गाय दी, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह दी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन ना तो आपने उसको अपने घर में पाला, क्या आपको कोई बड़ी मोहब्बत थी उसके, और आज आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आपको वाकई लगे कि मैं अपने दिल से चिमटी हुई चीज़ को अल्लाह की खातिर दे रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं। ना ही आपने पेट काट के कहीं पैसे निकाले कुर्बानी के लिए, कि आप कहें कि अल्लाह मैंने इतने सूट नहीं बनाए और मैंने कुर्बानी के लिए पैसे जमा किए थे। ना ही ऐसा कुछ वो था कि आपने पाल पाल के बकरे को और बहुत बड़ा किया और वो घर में रहता था, इसलिए जो है ना अब आपको देना मुश्किल है, कुछ भी ऐसा नहीं था। आपने तो पैसे दिए, या आपके शौहर गए होंगे किसी फार्म पे और वहां पे कुर्बानी करा, आपने तो देखा भी नहीं कि कौन सी चीज आपने कुर्बान की है, इतनी तो हमारे लिए आसानी है। मगर ये बताइए, क्या अगर अल्लाह ताला आपसे कोई आपकी पसंद की चीज मांगे तो क्या वो देंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो महबूब बेटे को दिया, आप बताइए कि आपको अल्लाह ताला अगर ये पूछे कि बेटे नहीं मांग रहा कोई भी, जान भी नहीं कोई मांग रहा, मगर एक ऐसी चीज है जो हम सबको बहुत प्यारी है, और वो चीज है भी ऐसी जो बहुत कम है सबके पास, क्योंकि जब भी लोगों से पूछा जाता है ना आपके पास ये है, तो कहते नहीं बहुत कम है, और जो चीज कम होती है उसको इंसान वैसे भी बहुत दिल से लगा के रखता है। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज की कुर्बानी मांगना चाहती हूँ जो सबको बहुत अजीज है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो अल्लाह की खातिर वो चीज कुर्बान कर सकते हैं। चले वो तो जिबा किया जो किया, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन अगर अल्लाह ताला आज जो उम्मत का हाल है कुछ और आपसे मांगे इस वक्त के लिहाज से, तो आप में से कितने लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे? अगर ये चीज बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी इतनी दिलचस्प है, इतनी प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए कि जब मैं ये कहानी पढ़ती हूँ, ये किस्सा मेरे सामने आता है, तो मुझे यकीन करें कि मैं अपने आप को इस जगह पे रख लेती हूँ और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि या अल्लाह, अगर मैं यहाँ पे होती तो क्या मैं ऐसा अमल कर सकती थी। ये कहानी कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की नहीं है, बाद की है, जब क्रूसेडर्स आए थे, वॉर्स हुई थी और जंगें हुई थी, सलीबी जंगें जिनको हम कहते हैं, और इसमें बहुत मुसलमानों का भी, जाहिर है, उन मुसलमानों की तरफ से बहुत कुर्बानियां हुई। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई सहाबा कराम की बात हो रही है, या आप ये नहीं कह सकते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की बात है, ये लोग भी आम लोग थे जैसे हम लोग हैं। इसीलिए इनकी इनका किस्सा आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों का किस्सा सुनते हैं ना, तो इंसान के जहन में ये बात आती है कि देखो, अगर ये लोग कुछ कर सकते थे तो हम क्यों नहीं, कि हम भी इनके जैसे ही हैं ना। ये वाकया अबू कुदामा का, किसी ने सुना हुआ इनका किस्सा? अच्छा, जिन्होंने नहीं सुना हुआ, आज उनके सामने मैं रखती हूँ कि ये शाम के रहने वाले थे और अपने वक्त के अजीम मुजाहिद थे, मुसलमानों के लश्कर के सिपा सालार थे। अल्लाह ताला ने इनको इतनी खूबियाँ दी हुई थी और इनका दिल भी बहुत अल्लाह के रास्ते में लगता था, जज्बा जहाद बहुत ज़्यादा था इनमें, बेशुमार इन्होंने लड़ाइयों में हिस्सा लिया था और हमेशा गाजी बन के वापस आए थे। एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स ने कहा, अबू कुदामा, आपने इतनी जंगों में हिस्सा लिया, यकीनन इस जिहाद में बाज़ ऐसे वाकयात पेश आए होंगे जिन्होंने आपको बहुत मुतासर किया, हमें कोई ऐसा वाकया सुनाए कि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। कहने लगे, अच्छा, फिर एक वाकया ऐसा है कि मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, बहुत, जिसने मुझे मुतासर किया। कहते हैं, सलीबी जंगें अपने उरूज पे थीं, जब भी ईसाइयों से मुकाबला होता था तो हमारे जो नौजवान थे वो सर पे कफन बांध के लड़ा करते थे। तो हमें पता चला कि एक जगह पे इस्लामी सरहद पे दुश्मन की फौज जमा हो रही है। तो कहते हैं, मैंने अपने साथियों के हमरा रिक्का, एक जगह थी, उसका रुख किया। ये शाम में है जगह, दरियाए फुरात के किनारे, तो एक कस्बा था, रिक्का उसका नाम था। कहते हैं, मैंने वहां से ऊंट खरीदा और सामान हर्ब रखा, शाम के वक्त कस्बे की मसाजिद में गया और लोगों को जिहाद की तरगीब दी। कई नौजवान हमारे साथ शामिल हो गए। मुजाहिदों के लिए लोगों ने बड़ा साजो सामान ढेर किया। कहते हैं, रात जब हुई तो मैंने एक कमरा किराए पे लिया और वहां ठहर गया। रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी रात गए, कौन है जो मुझसे मिलने आ सकता है? तो मैं इस शहर में बड़ा अजनबी था, अभी नया नया तो आया था, आखिर ये कौन हो सकता है? इसी सोच में था कि दरवाजे पे दोबारा दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला तो एक औरत खड़ी हुई थी जो सर से पैर तक हिजाब में ढकी हुई थी। कहने लगे, क्या तुम अबू कुदामा हो? मैंने कहा, हाँ, मैं ही अबू कुदामा हूँ। कहने लगी, आज तुम ही ने मस्जिद में मुजाहिदीन के लिए साजो सामान इकट्ठा किया है ताकि हमारी सरहदों की हिफाजत हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, अपना हाथ खोलो। मैंने अपना हाथ खोला, उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने एक पोटली मेरे हाथ में रख दी और अंधेरे में गायब हो गई। मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था लेकिन वो अंधेरे में ऐसी गायब हुई कि पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई। हाँ, जाते जाते एक बात कह गई कि ये रखो, ये अमानत है मेरी तरफ से, और तुम्हें कल कोई मिलने के लिए आएगा, तुम देखना कि वो लड़ने के काबिल है या नहीं। कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसी औरत थी जो ये ऐसा पैगाम दे के चली गई। कहते, मैं अंदर आया और मैंने कंदील रोशन की, पोटली को खोला तो उसमें एक खत था और एक लॉक ऑफ हेयर था, बालों से बनी हुई एक रस्सी थी, बालों से बुन के यानी बनी हुई थी एक रस्सी सी। मैंने इस खत को खोला, खत में कुछ यूं लिखा हुआ था, अबू कुदामा, आज तुमने लोगों को जिहाद की तरगीब दी ताकि तुम कमज़ोरों की खातिर लड़ सको और सरहदों की हिफाजत कर सको। मैं एक औरत हूँ और मैं लड़ तो नहीं सकती, ना मेरे पास इतना माल है कि मैं मुजाहिदीन के साथ के लिए पेश कर सकूँ। तो मेरा दिल बहुत दुखी हुआ जब मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने अपने बालों की लट काटी, ये मेरे बालों की लट है जो इस वक्त तुम्हारे पास है। यही था जो कुछ मेरे पास था, जो मैं दे रही हूं। मैंने इससे एक रस्सी बनाई, तुम इस रस्सी से किसी मुजाहिद के घोड़े को बांध लेना। हो सकता है कि जब मेरा रब मुजाहिद के घोड़े को मेरे बालों से बनी हुई रस्सी से बंधा हुआ देखे तो उसको मेरा ये अमल पसंद आ जाए और वो जान ले कि मैं भी तुम्हारे साथ जिहाद में शिरकत करने वाली हूँ, और वो मुझसे राजी हो जाए और वो मुझे माफ करके जन्नत दे दे। सुभान अल्लाह। यानी ये देखें एक औरत का जज्बा कि मैं जा नहीं सकती, मैं जिहाद में शरीक नहीं हो सकती, मैं कुछ और नहीं दे सकती, तो यही सही मेरे बाल ही काम आ जाए। अबू कदामा कहने लगे, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसी औरत है, इसको इतना जन्नत का शौक, अपनी मगफिरत की इतनी फिक्र है। कहते अगले दिन सुबह सवेरे हस्बे प्रोग्राम मुजाहिदीन का काफिला सरहद की तरफ रवाना हुआ। जब हम कुछ दूर गए तो मुझे पीछे से आवाज आई, या अम्मी अबू कुदामा, या अम्मी अबा कुदामा, ए मेरे चचा अबू कुदामा, इंतजरनी, मेरा इंतजार कीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम चलो, मैं इस बंदे की बात सुन के आता हूँ। मैं रुक गया और सवार का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो घुड़सवार मेरे पास आया, चेहरा चादर से ढका हुआ था। आते ही बोला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मेरे लिए ये लिखा कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई। मैंने कहा, जरा सांस तो लो, जरा ठहरो तो। उसने कहा, आपको नहीं पता मैं सारी जिंदगी एक दुआ करता रहा हूं कि ये मौका मुझे मिल जाए। मैंने कहा, क्या गर्ज है तुम्हारी मुझसे मिलने की? कहने लगा, मैं जिहाद में शिरकत के लिए आया हूँ, मुझे देर हो गई। मैंने कहा, अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ, अगर तुम्हारी उम्र होगी, जंग में जाने के काबिल तुम होगे, तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, वरना मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। उसने कहा, ऐसा ना करिएगा। चेहरे से उसने अपना वो चादर हटाई तो कहते हैं, मेरे सामने 17-18 ईयर ओल्ड बहुत खूबसूरत नौजवान था। ऐसा नौजवान मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन इतना कम उम्र। तो मैंने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। कहने लगा, आपको मेरी वालदा याद नहीं है? मेरी वालदा ने मुझे भेजा है। कहने लगे, कौन तुम्हारी वालदा? कहने लगा, वही जो रात को आपको वो पोटली दे गई थी। कहने लगे, तो वो तुम्हारी वालदा थी? बोला, हाँ वो मेरी वालदा थी, इसी ने मुझे जिहाद के लिए रवाना किया और मुझे कसम दी है कि जंग में शिरकत किए बगैर घर वापस ना आना। कहते, मैंने कहा कि तुम्हारे वालिद कहाँ है? बोला, वो शहीद हो चुके हैं। तो कहने लगे कि, मैंने कहा, तुम जाओ और अपनी वालदा की खिदमत करो, उसके पास वापस जाओ, उसके कदमों में जन्नत है। बोला, नहीं, मेरी वालदा ने ही मुझे ये भेजा है और उसने मुझे नसीहतें की हैं। जब मैं आ रहा था तो कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, मेरी बात गौर से सुनो, जब तुम्हारा काफरों से मुकाबला हो तो देखना कहीं तुम्हारे कदम फिसल ना जाए, तुम्हारे कदमों में लगजिश ना आ जाए, देखना जम के डट के मुकाबला करना, दुश्मन के मुकाबले में भाग ना जाना। जंग के वक्त तो रब की रहमतों का नजूल होता है, अपने रब से उसके जवार में रहमत मांगना, जन्नत में अपने बाप और अपने मामू की हमसाएगी मांगना, और फिर मेरे प्यारे बेटे, अगर तुमको शहादत मिल जाए तो अल्लाह से मेरी मगफिरत की शिफात करना। सुभान अल्लाह, ये जज्बे थे। कहते हैं, फिर मेरी वालदा ने मुझे सीने से लगाया और आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी, ए अल्लाह, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लखते जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं इसे तेरे सपोर्ट करती हूँ, ए अल्लाह, इसे अपने वालिद और मामू के पास जगह देना। ये कुर्बानियां हैं, ये होती कुर्बानी। ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बेटे के दी ही थी, देखें उसके बाद कितनी माओं ने अपने बेटों की कुर्बानियां दी हैं। अबू कुदामा ने बताया कि मुझे इस नौजवान की बातों पे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसा लड़का है। उसने जल्दी से कहा, अबू कुदामा, आपको अल्लाह की कसम, मुझे जंग में जाने से महरूम ना रखें, मैं रब की राह में शहादत हासिल करना चाहता हूँ, मैं एक शहीद का बेटा हूँ, एक शहीद का भांजा हूँ, मेरी छोटी उम्र पे ना जाए, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, तीरंदाजी जानता हूँ, घुड़सवारी मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चल के। कहते, मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं अब इसको साथ ले जाता, लेकिन मैंने उसको कहा ठीक है अगर तुम इतना इसरार करते हो तो ठीक है तुम हमारे साथ चलो, लेकिन एक शर्त है कि तुम आखिरी कतार में रहोगे, आखिरी सफ में रहोगे और मुजाहिदीन के लिए खाना तैयार किया करोगे। कहने लगा मुझे मंजूर है। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, दोपहर का वक्त आ गया और इस नौजवान से कहा गया कि अभी अब तुम खाना तैयार करो मुजाहिदीन के लिए। अब 2-3 घंटे गुजर गए और खाने का कोई अता पता नहीं है। अब सारे सबको भूख लगी हुई है, उन लोगों ने कहा, मुजाहिदीन ने कहा कि आप जाके देखें कि क्या माजरा है, आपका ये नौजवान आया नहीं है अबू खुदामा, क्या बात है आपके साथी को क्या हो गया। कहते हैं अबू खुदामा, मैंने कहा मैं अभी जाके देखता हूँ। जब जाके देखा तो नौजवान जो था वो चूल्हे पे बर्तन रख के, चूल्हे पे आग जली हुई है, बर्तन में खाना उबल रहा है और वो करीब सर एक पत्थर पे सर रख के सो रहा है। कहते मुझे बड़ा तरस आया, मैंने कहा ये लगता है काफी थक चुका है, सारा दिन मैंने इसको देखा भाग दौड़ कर रहा था मुजाहिदीन के लिए, चीजें मतलब उनके लिए आगे पीछे हो रहा था, जो किसी को चाहिए होता था उनकी मदद करता था, हर एक की खिदमत में बढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहा था, तो जरूर ये थक गया होगा बहुत ज्यादा। तो कहते मैंने खुद खाना पकाना शुरू कर दिया। इस दौरान मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट फैल गई, फिर मैंने देखा तो मुस्कुराहट गहरी होती चली गई, कुछ लम्हों में हंसना शुरू हो गया वो, फिर वो हंसी और जोरदार हंसी में बदल गई, और जब उसकी हंसी जोरदार हुई तो एकदम उसकी आंख खुल गई, और जो जू ही उसकी नजर मुझ पे पड़ी तो वो तो कुछ शर्मिंदा सा हो गया, ऐसे कुछ किसियाना सा हो गया, जैसे उसको कोई राज था जो उसका खुल गया। और इसने कहा मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके खाने में देर कर दी, दरअसल थकावट की वजह से मुझे नींद आ गई थी और मैं शायद बहुत गहरी नींद सो गया था। तो मैंने मोहब्बत से इसको देखा और कहा कोई बात नहीं तुम मेरे बेटे हो, आओ मिलके खाना पकाते हैं। इसने कहा नहीं नहीं मैं आपका खादिम हूँ, मैं खाना तैयार करूँगा। तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें खाना तैयार उसी वक्त करने दूंगा जब तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों हंस रहे थे। कहने लगा मैं हंस रहा था। हाँ अबू कुदामा फरमाने लगे हाँ तुम हंस रहे थे। कहने लगा असल में मैं एक ख्वाब देख रहा था और ख्वाब देखा कि उसकी वजह से मैं हंस रहा था। अबू कुदामा फरमाने लगे तो फिर वो ख्वाब मुझे बताओ, क्या ख्वाब था। कहने लगा मैं वो आपको नहीं बता सकता, इसलिए कि अगर मैंने आपको बताया तो कहीं ये ना हो कि मेरा अजर जाया हो जाए, कहीं ये ना हो कि मेरा यहाँ पे आना कबूल ना हो, मैं नहीं आपको ख्वाब बता सकता, कहीं रयाकारी ना हो जाए। अबू कुदामा ने कसम दी उसको कि नहीं तुम मुझे ख्वाब सुनाओगे नहीं तो मैं तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगा। वो कहने लगा अच्छा अगर आप इतना ही इसरार करते हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन फिर इसको राज रखिएगा। तो कहने लगा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं जन्नत में हूं और जन्नत कयामत का, पहले तो कहते मैंने देखा है कि कयामत का दिन है और एक आवाज आती है मोहम्मद को जन्नत में ले चलो, एक रोशनी सी आई और मुझे उठा के ले चली, और उसमें मैंने एक वहां पे देखा एक बड़ा खूबसूरत नौजवान है जिसके चेहरे की इतनी रोशनी है, इतना नूर है उसके चेहरे पे कि जहां तक मेरी नजर जा रही है उसका नूर ही नूर है। तो मैंने कहा तुम कौन हो, बोला मैं आपका खादिम हूं, मैं जन्नत में आपका नौकर हूं। मैंने कहा अच्छा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, बोला आपको आपकी सल्तनत में ले जा रहा हूं, आपके महलों में ले जा रहा हूं, आपके अहले खाना के पास ले जा रहा हूं। कहने लगा मेरी मुस्कुराहट फैल गई ये बात सुन के, और फिर वो मुझे आगे ले जाता गया ले जाता गया, और एक महल आ गया, महल के गेट्स पे जाके वो रुक गया और वहां पे उसने रुक के कहा कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इसमें आपकी औरतें हैं और मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं उन पे नजर डालूं, इसलिए मैं महल में दाखिल नहीं हो सकता। चुनाचे लड़का कहने लगा, लड़के का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद कहने लगा मैं महल में दाखिल हो गया, मैंने देखा उसमें इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं कि अगर वो जमीन पे झांक लें तो सारी जमीन रोशन हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरी बीवियां हो, वो कहने लगे नहीं नहीं हम तो आपकी खादमाएं हैं, हम तो नौकर हैं। इतने में एक लड़की ने अपने साथ वाली से कहा, ये मरजिया का खामिंद है, ये मरजिया का खामिंद है। तो कहते हैं, मैंने मुझे नहीं पता मरजिया कौन है। मैंने उनसे पूछा, कौन मरजिया? मरजिया पता है क्या मतलब? राजी करने वाली। कहने लगी, मरजिया वो है, आप उसको मिलना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो इस महल में दाखिल हो जाएं, वो वहां पे आपका इंतजार कर रही है। कहने लगा, मैं उस महल में दाखिल हुआ, उसके कमरा एक बहुत खूबसूरत था, एक से एक बढ़ के खूबसूरत कमरा। ऊपर वाली मंजिल में एक बहुत ही हसीन कमरा था। मैं वहां चला गया तो वहां पे मुसहरी सजी हुई थी, उस पर नहायत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझे ऐसे लगा कि मेरा दम निकल जाएगा। मैंने कहा, तुम कौन हो? और मैं मुस्कुरा दिया, इतना मुस्कुराया कि मुझे हंसी आ गई। वो जब मुस्कुराहट पहली थी ना उसकी, कि हंसने लगा था, तो उस वक्त मुझे हंसी आ गई, इतना खुश था मैं। इसके करीब हुआ तो वो कहने लगी, ए अल्लाह के वली, ए उससे मोहब्बत करने वाले, मैं मरजिया हूं, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे लिए और तुम्हें मेरे लिए पैदा किया है, मेरी और तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी नरमी से मेरा हाथ पकड़ के लौटा दिया और कहने लगी, नहीं है मोहम्मद, ला या मोहम्मद, अभी नहीं, अभी मेरी और तुम्हारी मुलाकात में थोड़ा वक्त बाकी है, मेरी तुम्हारी साथ मुलाकात कल जोहर के बाद होगी और हम इकट्ठे रोजा इफ्तार करेंगे, क्योंकि जो मोहम्मद था ना, वो हर एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखा करता था। तो कहते, मैंने फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने फिर लौटा दिया। इसने में मुझे और हंसी आ गई और मैं खिलखिला के हंसने लगा और मेरी आंख खुल गई। अबू कुदामा कहते हैं कि मैंने कहा, तुमने तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। कहने लगा, लेकिन आप इसको राज रखिएगा, कहीं मेरा अजर ना जाया हो जाए। कहते हैं, फिर हमने रात का खाना खाया और अगले दिन सफर की तैयारी करी। फजर की नमाज के बाद कूच किया और सारी इस्लामी फौज के साथ, जो आगे फौज थी उसके साथ मिल गए। दुश्मन जब सामने आया तो इन्होंने सफों को सीधा किया और अबू कुदामा इसी सोच में थे, फिक्र में थे कि इस लड़के को मैं अपने साथ रखूं, ये इतना यंग है, पता नहीं कहाँ पे है। अचानक कहते हैं, मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो बिल्कुल अगली सफों में खड़ा हुआ था। मैं सफों को चीरता हुआ इसके पास जा पहुंचा। मैंने कहा, ए मेरे बेटे, क्या इससे पहले तुम किसी जंग में शरीक हुए? उसने कहा, नहीं, ये मेरी पहली जंग है, पहला जिहाद है, मैं पहली दफा जंग को देख रहा हूं। मैंने कहा, बेटे, जंग कोई खेल नहीं है, ये बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते पानी हो जाते हैं, तुम ऐसा करो, पिछले हिस्से में जाओ। कहने लगा, आप मुझे पीछे भेज रहे हैं? आप मुझे कैसी बात कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं मैं जहन्नमी हो जाऊं? मैंने कहा, औजु बिल्ला, बेटे, मैं ऐसा क्यों जाने लगा? कहने लगा, तो फिर आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, जब तुम काफिरों से मुकाबले में हो तो उनके सामने पीठ मत फेरना, तो मैं कैसे पीछे चला जाऊं? क्या आप चाहते हैं मैं मैदान जंग से भागने वालों में बन जाऊं? अबू कुदामा कहने लगे, मैं इस अभी इसकी सोच और फिक्र पे बड़ा ताज्जुब कर रहा था और सोच रहा था, इसको कैसी इसके अंदर मोहब्बत है। कहते, मेरे आंखों में आंसू आ गए। इसी दौरान में लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई बहुत शिद्दत की थी और फिर मुझे नहीं पता चला वो कहाँ चला गया। दोनों तरफ से लोग बड़ी बहादुरी से लड़े, फिर लोग जख्मी होके नीचे गिर रहे थे, बहुत खून खराबा था मैदान जंग में, गर्दो गुबार उड़ रहा था, किसी को किसी का होश नहीं था। हत्ता के दोपहर का वक्त आ गया और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी, दुश्मन भाग गए। जब मैदान खाली हुआ तो हमने जोहर की नमाज अदा की, फिर हर कोई अपने अपने अजीज को, दोस्त को तलाश करने लगा, उसका हाल पूछने के लिए निकल खड़ा हुआ। मगर वो नौजवान, उसका तो कोई करीबी साथी भी नहीं था, ना उसका कोई पूछने वाला था। तो कहते, मेरे दिल में बड़ा ख्याल आया कि वो कहाँ है, कहीं जख्मी तो नहीं हो गया, कहीं शहीद तो नहीं हो गया, कहीं दुश्मन भागते हुए उसे कैदी बना के तो नहीं ले गए। दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मैं उसको तलाश करने के लिए चल खड़ा हुआ, मैं जख्मियों में उसे तलाश कर रहा था, मक्तूलीन में तलाश कर रहा था, कि एकदम मुझे एक आवाज सुनाई दी, या अम्मी अबा कुदामा, या अम्मी अबा कुदामा, ए मेरे चचा अबू कुदामा, ए मेरे चचा अबू कुदामा। तो मैं आवाज की तरफ बढ़ा, सामने उस नौजवान को शदीद जख्मी हालत में देखा। उसका जिस्म जख्मों से चूर था, सीने की हड्डियां टूट चुकी थी। मैं तेजी से इसकी तरफ बढ़ा, मेरे बेटे मेरी तरफ देखो, मैं हूं तुम्हारा चचा अबू कुदामा, ये मैं हूं। इसने आंखें खोली और कहने लगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि अबू कुदामा मेरे पास आ गए। चचा मेरी वसीयत को पल्ले बांध ले, इसे गौर से सुने। मैंने इसको अपनी गोद में लिटा लिया। इसके खूबसूरत चेहरे को देखा तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, इतना खूबसूरत चेहरा। मैंने अपनी अबा से, अपने कपड़े से इसके चेहरे को साफ किया। दिल में इसकी माँ का तसव्वुर आया कि जब उसको बेटे की ऐसी इत्तला मिलेगी तो उसका क्या हाल होगा। पिछले साल उसका खामिल शहीद हुआ, फिर उसका भाई और अब बेटा, अल्लाह अकबर, इसके दिल पे क्या गुजरेगी। मोहम्मद ने अपनी आंखें खोली, कहने लगा, चचा अपनी चादर से मेरे जिस्म को ना साफ करें, बल्कि मेरी चादर से इस खून को साफ करें। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ, जब मेरी वफात हो जाए तो मुझे इसी मैदान में दफन कर देना, और रिक्का में मेरी वालदा के पास जरूर जाना, उसको खुशखबरी सुनाना कि उसके रब ने इसके तोहफे को कबूल कर लिया, उसका बेटा अल्लाह की राह में शहीद होके पहुंचा। उसने जख्म अपने सीने पे खाए, दुश्मन के मुकाबले में पीठ नहीं फेरी। मेरी वालदा से कहें, कल इंशाल्लाह मैं जन्नत में अपने वालिद और मामू से मुलाकात करूंगा, तो उनको आपका सलाम पेश करूंगा। चचा जान, मेरी वालदा मेरी मौत पे यकीन नहीं करेगी, ऐसा करें मेरे कपड़े अपने साथ ले जाएं, उसको दिखाएं और उससे कहें, अब तुम्हारी तुम्हारे बेटे से इंशाल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। और मेरे घर में मेरी 9 साल की छोटी बहन है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है। जब मैं घर जाता था तो खुशी से चहक उठती थी, जब घर से रवाना होता था तो गमगीन हो जाती थी। पिछले साल मेरे वालिद की शहादत पे वो बड़ी गमगीन हुई, बड़ी परेशान रही। जब मैं जिहाद के लिए जा रहा था तो वो मेरे रास्ते में खड़ी हो गई और कहने लगी, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, आप रुक जाए। तो मैंने उसे वादा किया था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप मेरी बहन को, चचा जान, आप मेरी बहन को दिलासा देना, उसके हाथ सर पे हाथ रखना, उसको हौसला देना। अबू कुतामा कहने लगे, मैंने कहा, मोहम्मद तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, मैंने तुम्हें कहा था जंग बॉडी खौफनाक चीज़ है, मैंने तुम्हें कहा था अभी तुम्हारा तजर्बा नहीं है, तुम अभी कम उम्र हो, तुमने ऐसा क्यों किया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, या अम्मी अबू कुदामा, यही तो वो दिन है जिसके लिए मेरी माँ ने मुझे जना था, मेरा बाप इसी रास्ते में शहीद हुआ था, क्या आप मुझे इस रास्ते से बाज रखना चाहते हैं। सब लोगों में क्या आप मुझे कहते हैं कि मैं वापस चला जाता। वल्लाह मुझे तो मेरे महल नजर आ रहे हैं, काश आप वो देख सके जो मुझे नजर आ रहा है। और उसकी आवाज कम होती जा रही थी, उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, उसकी बातें भी अच्छी तरह समझ नहीं आ रही थी। अचानक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई और हत्ता कि वो हंसने लगा, कहने लगा, चचा जान अल्लाह की कसम, मेरे रब ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया, रब्बे काबा की कसम, वो ख्वाब जो मैंने देखा था वो सच था, मुझे मर्जिया नजर आ रही है, वो आसमानों से उतर रही है, उसकी खुशबू आ रही है, वो मेरा इंतजार कर रही है, वो मर्जिया मेरा इंतजार कर रही है। फिर देखते ही देखते उसने मेरे हाथों में जान दे दी। अबू कुदामा कह रहे थे, मैंने इसके खून आलूद कपड़ों की गठरी बनाई, शोहदा को दफन किया, उसका पैगाम उसकी वालदा को पहुंचाने के लिए रिक्का गया। मुझे ना उसकी वालदा का नाम पता था, ना उसका घर का कोई अता पता था। मैं इसी सोच में था कि इसके घर के बारे में कैसे मुझे पता चले। गलियों में चलते चलते एक मकान के बाहर मैंने एक परेशान सूरत बच्ची को देखा, जो सारे राहगीरों से पूछ रही थी, तुम कहाँ से आए हो। अगर कोई कहता था मैं मैदान जंग से आया हूँ, तो कहती थी, मेरे भाई के बारे में बताओ, मेरा भाई कहाँ है, तुमने उसको देखा। सारे लोग इनकार करते हुए चल आगे बढ़ जाते थे, लोग कहते थे हमें पता नहीं है। फिर इसकी नजर मुझ पे पड़ी तो कहने लगी, चचा जान आप कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा मैं जिहाद से। वो बोली, फिर तो आपको मेरे भाई के बारे में जरूर मालूम होगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी वालदा कहाँ है। कहने लगी, वो घर में है। मैंने कहा उसको बाहर बुला के लाओ। थोड़ी देर में उसकी वालदा चादर में लिपटी हुई बाहर आई। जब उसने मेरी आवाज़ सुनी तो उसने पूछा, तुम अबू कुदामा हो। मैंने कहा हाँ। कहने लगी, तो फिर बताओ तुम मेरे लिए खुशखबरी लाए हो या कोई बुरी खबर लाए हो। मैंने कहा अम्मा जान मुझे नहीं पता तुम्हारे नज़दीक खुशखबरी के माने क्या हैं। कहने लगी, अगर तुम मुझे ये खबर दोगे कि मेरा बेटा इस्लाम के दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हो गया, तो ये मेरे लिए खुशखबरी है कि मैं शहीद की माँ हूँ। और अगर मुझे बताओगे कि मेरा बेटा बच के गाजी बन के माले गनीमत लूट के लाया, ये मेरे लिए अच्छी खबर नहीं है। इसलिए कि मेरे रब ने फिर मेरे हदीये को लौटा दिया, मेरे तोहफे को कबूल नहीं किया। ते मैंने दिल पे काबू रख के कहा, अम्मा जान मैं तुम्हारे पास शहादत की खुशखबरी लेके आया हूँ, तुम्हारा बेटा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। इसने जख्म सीने पे खाए, दुश्मन के मुकाबले से मुंह नहीं फेरा। माँ कहने लगी, अबू कुदामा मुझे तुम्हारी बात पे पूरा यकीन नहीं है, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैंने वो खून आलूद कपड़ों की गठरी खोली और इससे इस नौजवान के कपड़े निकाले। ये देखो अम्मा इसका फटा हुआ कुर्ता, क्या वो यही पहन के घर से नहीं निकला था? ये देखो इसकी चादर, इसी से तुमने अपने हाथों से इसके सर पे पगड़ी बांधी थी ना। मैं इसको रोते हुए कपड़े दिखाता गया। उसकी बहन खामोशी ही से ये मंजर देख रही थी। उसकी वालदा ने अल्लाह अकबर कहा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसकी बहन को जब अपनी भाई की शहादत का पता चला, यकीन हो गया, तो उसने चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसकी माँ दौड़ती भी अंदर गई और पानी का प्याला लेकर आई। मैं बच्ची के मुंह पे पानी के छींटे मारने लगा और उसको होश में लाने की तरकीब करने लगा। उसकी माँ ने बच्ची को अपने हाथों से उठाया और घर में चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे से मुंह लगाए खड़ा रहा और उसकी आहोजारी सुनता रहा। वो कह रही थी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मैंने अपना खामिद, अपना भाई, अपना बेटा तेरे सपुर्द कर दिया, वो तेरे रास्ते में शहीद हो गए। ऐ अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा और मुझे इसके बदले में जन्नत अता फरमा दे। अबू कुदामा कहने लगे, मैंने कई दफा दरवाजा खटखटाया कि शायद वो दरवाजा खोल दे, तो मैं इसकी कोई माली मदद ही कर दूं, इसके बारे में लोगों को ही बता दूं कि कोई इसकी इमदाद करे, मगर ना उसने दरवाजा खोला ना उसकी आवाज सुनाई थी। अल्लाह की कसम मैंने इससे ज्यादा इस्लाम से और अपने रब से मोहब्बत करने वाली कोई औरत नहीं देखी। ये एक औरत थी जिसने अपनी हर प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। क्या अल्लाह ताला कयामत के दिन इस औरत को और हमें खड़ा नहीं करेंगे और अल्लाह ताला सवाल नहीं करेंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारियां, हमने अपने फराइज कहाँ तक पूरे किए, हमने क्या कुर्बान किया, हमने क्या दिया? हमसे तो कुछ ऐसा मांगा भी नहीं गया। कोई ऐसी जंग नहीं हो रही जिसमें हमें बेटों को भेजना पड़े, शौहरों को भेजना पड़े, किसी को रुख्सत करना पड़े। कोई जान की कुर्बानी नहीं मांगी, फिर भी हम कुछ भी कुर्बान नहीं करना चाहते। जरा अपने ईमान का जायजा ले। सोचती हूँ जिस औरत ने अपने बाल काट के वो अल्लाह के रास्ते में दिए कि इससे घोड़ा ही बांध लिया जाए, तो मैं, चलो मैं नहीं शरीक हो सकती, मेरे बाल चले गए ना तो अल्लाह इनको कबूल कर लेना, मेरे बाल चले गए तो अल्लाह मुझे भी जिहाद में शरीक समझना। जो उसके पास था वो उसने दे दिया। आज मैं आपसे पूछती हूँ, जो आपके पास है, जिस चीज का मैं आपसे आज सवाल करना चाहती हूँ, और जो सब समझते हैं कि हमारे पास कम है, आज उस कम की ही जरूरत है, और वो है आपका टाइम, आपका वक्त, कि जब किसी से पूछा जाए कुरान की तरफ आइए, कौन सी चीज आपको रोकती है, तो कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम की कुर्बानी नहीं देना चाहते। जबकि जिंदगी अल्लाह ने दी, जिंदगी उसकी अमानत है, जिंदगी देने वाला भी वही, वक्त देने वाला भी वही, फिर भी वक्त को ही उसके रास्ते में कुर्बान करने से झिझकते हैं। वो आपका वक्त लेके क्या आपसे, आपकी जिंदगी कोई काम हो जाएगी, क्या आपके काम रह जाएंगे? नहीं, जब वो आपसे वक्त मांग रहा है तो वो आपके वक्त में इतनी बरकत दे देगा कि आप देखेंगे कि आपके सारे ही काम हो जाया करेंगे, कोई काम नहीं रहता। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी की कुर्बानी मांगी तो बेटा भी वापस कर दिया और एक और बेटा भी दे दिया। अल्लाह ताला कुर्बानी, आप सोचते हैं कि आपसे कोई लेके अल्लाह ताला रख लेगा? नहीं, वो किसी का लेकर रखता नहीं है, किसी का एहसान नहीं रखता, वो उससे बढ़ के वापस लौटा देता है। उसको कोई आपकी चीजें चाहिए? उसी ने दिया, वो ही आपसे आपका टाइम मांगता है तो आप कहते नहीं है। जिसकी चीज हो उसी को देने से घबराते हैं। कुर्बानी तो महबूब चीज की होती ना, आप कहते हैं पैसे दे दूंगी, वक्त नहीं दे सकती। चैरिटी बॉक्स में मैं $2 डाल दूंगी, $10, $20 आप मांगते हैं वो डाल दूंगी, टाइम नहीं दे सकती, टाइम मुझे बहुत प्यारा है। तो असल बात है ही कि प्यारी चीज की ही तो कुर्बानी करनी है, तभी तो कुर्बानी का लुत्फ आता है, वाकई तभी रब का कुर्ब महसूस होने लगता है। आके तब भी दिल से निकलता है, ये अल्लाह ये आपके लिए, मेरे पास वक्त नहीं भी था फिर भी मैं वक्त निकाल रही हूँ आपके लिए। आप किसी को तोहफा देती हैं, आप कहीं जाती हैं आम लोगों के घरों में, वो तोहफा लेके जाती हैं, तो जिनके साथ आपका ज्यादा ताल्लुक नहीं होता, जो घर में पड़ा होता है आप उठा के कहते हैं चलो यही ले जाती हूँ, यही पैक करके ले जाती हूँ, है ना। मगर जिनसे आपको बड़ी गहरी मोहब्बत होती है, आप उनके लिए क्या तोहफा खरीदती हैं, क्या लेके जाती हैं, घर में पड़ी हुई कोई भी चीज ले जाती हैं, नहीं, क्या लेके जाती है। मसलन आपकी बेटी है, आपने उसको शादी पे तोहफा देना है ना, तो आप अरसा दराज से कहती हैं ये मेरा सेट है ना, ये मुझे बड़ा प्यारा है, ये सेट मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है, उसकी शादी के लिए रखा हुआ है, ये मैं उसको उसकी शादी पे दूंगी, ये मैंने फलां के लिए रखा हुआ है, ये मैं किसी और को नहीं दे सकती, ये मैं उसको दूंगी, क्योंकि आपको बेटी बहुत प्यारी है। इसी तरह जो आपको बहुत प्यारा होता है ना, आप प्यारी चीज उसके लिए निकालती हैं। आप प्यारी चीज उसको देती हैं। मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप शायद हो गई, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी आवाज़ में मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप अपनी तरफ से बेशक म्यूट कर दीजिए ताकि मुझे मेरी आवाज़ ना वापस आए इंशाल्लाह। तो मैं आपसे कह रही थी कि आप जो आपको ज़्यादा प्यारा होता है ना, उसको आप तोहफा भी सबसे ज़्यादा प्यारा देते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा उसके लिए कीमती तोहफा निकालते हैं, और जो अपनी प्यारी चीज़ होती है वो देते हैं, क्योंकि वो स्पेशल है ना। आप भी बंदा देख के तोहफा भी देते हैं ना, हर एक को एक जैसे आप तोहफे भी नहीं देते, ऐसा ही है ना। तो आप अल्लाह ताला को किस कैटेगरी में डालेंगे, आम आम रिश्तों वाली या खास? बेटी के लिए आप खास सेट निकालती हैं, बेटी की शादी है उसके लिए, वो नहीं है कि जो भी घर में गंद मंद पड़ा हुआ है वो लेके तो उसको दे दें, या जो आपकी बहन है कोई, आप अपने रिश्तेदारों के लिए लेकर जाती हैं तोहफे, जब आप जाती है पाकिस्तान जाते हैं, आप रिश्तेदारों को देते होंगे, जो जितना प्यारा होता है आप उसके लिए उतनी प्यारी चीज़ लेते हैं, और अपनी प्यारी चीज़ उसकी को देते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, अल्लाह को क्या देंगे, उसको आप किस कैटेगरी में डालें, आम लोगों वाली कि जो जो फालतू फालतू है वो दे दिया, या खास उल खास वाली कि ये मेरी खास चीज है, ये मेरी कीमती चीज है, ये मेरा कीमती वक्त है, ये मुझे बड़ा प्यारा है वक्त, ये सिर्फ मैं अपने रब को दूंगी। याद रखें, जब इंसान अल्लाह की खातिर कोई प्यारी चीज कुर्बान करने को तैयार हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला बढ़ के उसका इस्तकबाल करते हैं, बढ़ के उसको कबूल करते हैं, बढ़ के उसको लेते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, फिर घर कैसे देखेंगे, फिर बच्चों का काम कैसे होगा, फिर ये कैसे करेंगे, कुरान सीखने लग गए तो फिर हमारे ये काम ना रह गए रह जाए, तो अल्लाह की तरफ आओगे तो क्या अल्लाह आपके कामों में कमी कर देगा, क्या आपके काम अधूरे रह जाएंगे? नहीं, अल्लाह की तरफ आओगे तो वो आपके वक्त में ऐसी बरकत दे देगा कि काम भी होंगे और अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा। आज हमने दीन को कुछ नहीं दिया, मैं समझती हूँ कुछ नहीं दिया, लिया ही है, दिया कुछ नहीं है। जो लोग पहले गुजरे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस दीन की खातिर, इसी वजह से उनको दीन प्यारा भी बहुत था, क्योंकि हमने कुछ लगाया ही नहीं है इस दीन के लिए, इसलिए हमें कोई ऐसे खास फर्क भी नहीं पड़ता। आप देखें जो लोग सुभान अल्लाह सहाबा कराम के दौर में थे, आप देखते हैं कि उनके दौर में किस किस तरह लोगों ने कुर्बानियां दी, फिर उसके बाद भी जैसे मैंने अभी आपको यह बताया, जब जंगें होती थी किस किस तरह लोग कुर्बानियां दिया करते थे, कोई पीछे नहीं रहता था। आज हम माएं खुश होती हैं कि बच्चों को हम दुनिया के लिए थका रहे हैं, वो बच्चों को दुनिया के लिए थकता देखते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं, एक वो माएँ भी थीं जिनका ईमान ऐसा था कि बच्चों को अल्लाह के लिए लगाती थी और फिर उस पे राजी होती थी, उस पे खुश हुआ करती थी। आज दीन का हाल जो हम इतनी शिकायत करते हैं ना, आज उम्मत का हाल क्या है, आज दीन का हाल क्या है, आज फलां का, शिकायतें करते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आप लगा क्या रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है। आप अपने आप से कभी पूछते हैं कि मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है इस दीन के लिए, क्या मैंने कुछ दिया इसके लिए? कुछ भी नहीं। औलादे देना तो दूर की बात है, हम तो घर की मसरूफियात नहीं छोड़ पाते, हम तो थोड़ा सा अपना टाइम नहीं दे पाते। कि अगर आपसे कहा जाए थोड़ा सा अपना टाइम दे दे, यहाँ पे मैं सबको ही कहूंगी जो अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं स्टूडेंट, लेकिन वो रेगुलर नहीं होते, या जो लिसनर हैं वो स्टूडेंट नहीं बनते, हमारे पास टाइम ही नहीं है, बस हमने सुन लिया इतना ही काफी है। या जो बाकी लोग हैं जो आना ही नहीं चाहते, जिनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा है, तो फिर देख लें कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे। ऐसे ऐसे लोग आपके सामने खड़े होंगे जिनका मैंने आपको किस्सा सुनाया, इनके सामने आप अपने ईमान को कहाँ पाते, किधर खड़े हुए हैं? और फिर हम शिकायत करें उम्मत की बदहाली का, उम्मत की कमजोरी का, तो फिर हम शिकायत करने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं लगाया। तो आज आप सीखेंगी, कल अपनी औलादों को सिखाएंगी, उनकी ऐसी तरबियत करेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि फिर ही इसका समर पाएंगे, अगली नस्लों में आप देख सकेंगी इसका फल, आपको अगली नस्लों में नजर आएगा, और तभी ये उम्मत दोबारा वापस जागेगी और अपने पैरों पे खड़ी होगी। अदरवाइज हम इसी तरह रोते रहेंगे, क्योंकि आज हमने दुनिया को महबूब बना लिया, आज हमारे नजदीक दीन की कोई अहमियत नहीं, आज हमारे नजदीक दीन के कोई भी इंपॉर्टेंस रह ही नहीं गई। हर एक के लिए प्रायोरिटी घर बन गया, जॉब बन गई, करियर बन गया, तालीम बन गई, दीन वो साइड पे करो, वो अल्लाह तोबा कर ली बहुत काफ़ी है, वो हमने नमाजें पढ़नी बहुत काफ़ी है, वो हमने रमज़ान में कुरान खोल लिया बहुत काफ़ी है। तो इसलिए मेरी बहनों, आज मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप अल्लाह की खातिर थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़े से वक्त की कुर्बानी दीजिए। क्या आप ये कुर्बानी दे सकती हैं? कौन कौन है जो ऐसी कुर्बानी दे सकता है? क्या कुर्बानी ये बहुत बड़ी है? क्या ये बहुत बड़ी कुर्बानी है? नहीं ना, अल्लाह की खातिर तो हम अपना सब कुछ भी कुर्बान करते तो वो कम है, सब कुछ भी दे देना कम है, क्योंकि सब कुछ उसी ने तो दिया है, क्या हो गया अगर आप उसकी खातिर दे रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एहसान नहीं किसी पे, अपनी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टाइम, ये कहें कि मैंने बस अल्लाह की खातिर दे दिया। तो कौन कौन सी बहनें ऐसी हैं, अपना हाथ खड़ा करेंगी? पीछे तक भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके जज्बात को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके वक्त को कबूल फरमाए। लेकिन याद रखिए कि जब आप घर पहुंचते हैं ना, शैतान हावी हो जाता है, फिर वो कहता है लो तुम कैसे वक्त निकालोगे, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जब ऐसा दिल में ख्याल आए तो जो वसवसा शैतान डाले, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इस शैतान के वसवसों से भी अल्लाह की पनाह में आना चाहिए, अल्लाह ही बचा सकता है, वरना शैतान कहता रहेगा नहीं कैसे करोगे। मैं यकीन कर, मैं आपको अपनी मिसाल बताती, मेरे भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, मेरा भी घर है, मेरा भी जाहिर है घर की जिम्मेदारी है, मेरे तो कोई नौकर नहीं काम कर रहे, लेकिन कैसे काम चलता है ये मैं नहीं आपको बयान कर सकती, मुझे पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता अल्लाह ताला कैसे वक्त में बरकत डाल देते। तो मैं अपनी मिसाल से, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मेरे यानी मेरे ऊपर यानी एक बीवी होने की या माँ होने की या एक खातून खाना होने की कोई जिम्मेदारी ना हो, फिर तो अलग बात है, लेकिन जब आप शादीशुदा भी होते हैं, जब आपके बच्चे भी होते हैं, जब आपने घर को भी देखना होता है, तो सब चीज़ों को लेके चलना होता है ना। मैं इसमें लोग मेरे से पूछते हैं आप कैसे मैनेज करती हैं, मैं कहती हूँ मैं नहीं मैनेज करती, मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि ये अल्लाह है कि वो कैसे करवाता है, ये मुझे भी नहीं समझ आते, मुझे इसका जवाब आता ही नहीं है, मैं दे ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे नहीं पता किस तरह अल्लाह ताला वक्त में ऐसे बरकत डालता चला जाता है। कैसे हो सकता है मेरा रब बरकत ना डाले उस वक्त में जो आप अल्लाह की खातिर दें, कैसे हो सकता है वो कबूल ना करे, और कैसे हो सकता है कि वो आपके वाकई सारे कामों का जिम्मा खुद ना ले ले? आप जब उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते, वो क्या आपकी तरफ 10 कदम नहीं आएगा? तो इसलिए ज़रूर इंशाल्लाह अपना वक्त लगाइए। आपके पास यहाँ पे ये फॉर्म्स होंगे, ये आपको बहनें देंगी, आप ज़रूर फॉर्म फिल करें। एज अ स्टूडेंट आए, मैं कहती हूँ एज अ लिसनर, आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि एज अ स्टूडेंट आने में आपको कितना फ़ायदा होता है। हम आपसे कोई फीस नहीं लेते, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। हमें तो ये भी नहीं पता आपके घर कहाँ हैं, आप कौन हैं, आपका सिर्फ नाम हम तक पहुँचता है। हम सिर्फ आपको कहते हैं आओ कुरान को सीखो, फिर आगे अपने बच्चों तक पहुँचाओ, फिर आगे और लोगों तक पहुँचाओ। इसी तरह चिराग से चिराग जलेगा और ये उम्मत वापस आएगी। और अगर हम ये नहीं करते तो फिर उसके बाद कोई शिकायत ना करें, क्योंकि मैं भी फिर जिम्मेदार हूँ, आप भी फिर जिम्मेदार हैं कि हमने देना कुछ नहीं है, लेकिन बस घर बैठे बातें बनाना ना, वो फलाने ऐसे करते हैं और फलान देखो मुसलमानों का ये हाल है। फिर हम कोई इस काबिल नहीं है कि फिर हम कोई भी शिकायत कर सकें, क्योंकि हम खुद कुछ कदम नहीं उठाना चाह रहे। तो इसलिए कदम बढ़ाइए, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाइए, और अल्लाह ताला आपके हर उठते हुए कदम को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। जो लोग भी इस चीज़ का इंशाल्लाह ताला आज इरादा करते हैं, अल्लाह ताला उनके इरादों में उनको कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पे आना बैठना कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को इसके बदले में अजर अजीम अता फरमाए, हर हर कदम पे अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला जो जो इस चीज़ के लिए इरादा फरमाते हैं तेरे कलाम का, अल्लाह ताला तू उनको साबित कदमी अता फरमाना, जो पहले से मौजूद हैं अल्लाह उनको जमा के रखना, और जो इरादा कर रहे हैं अल्लाह ताला तू उनकी ज़िम्मेदारी खुद फरमा ले। या अल्लाह उनको शैतान के वसवास से दूर रखना, अल्लाह ताला ने अपनी पनाह में ले लेना। या अल्लाह ताला हम सबको साबित कदमी अता फरमाना इस दीन पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।